आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
हमारे अगले कवि हैं श्री विनोद भारद्वाज। इससे पहले सत्र में जब वो बोल रहे थे श्रीकांत वर्मा पर, तब हम लोगों ने एक बहुत ईमानदार, साहसिक और मौलिक संस्मरण उनके सुने। एक बार और उनका परिचय देने का समय है। उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, जलता मकान, होशियारपुर और अन्य कविताएं, 1 कहानी संग्रह है फेसबुक लव, और 3 उपन्यास हैं सेप्पुकू, सच्चा झूठ और एक सेक्स मरीज का रोजनामचा। कला, संगीत और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, विपुल काम है उनका। चर्चित पत्रिका आरंभ की संपादकीय टीम में रहे हैं, धर्मयुग, तिरमान, नवभारत टाइम्स, कई जगहों पर उन्होंने पत्रकारिता की है और कला संबंधी लेख लिखे हैं। आधुनिक कला कोष का निर्माण किया है और 1981 में इन्हें विष्णु खरे के द्वारा भारत भूषण पुरस्कार दिया गया था, कविता के लिए बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार। 1989 में उन्हें लेनिनग्राद के पहले गैर कथा फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी का एक सदस्य बनाया गया था। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी तक हिंदी के वो एकमात्र फिल्म समीक्षक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जूरी का सदस्य बनाए जाने का यह दुर्लभ सम्मान मिला है। रजा के रंग के नाम से उनकी कविता है, उसका मैं बीच का हिस्सा पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो एक लंबी कविता है, और उसके बाद जिसे निवेदन है कि आकर अपनी कविता पढ़ें। इस माहौल में रजा के रंग मुझे बचाते हैं, वे मेरे पास आते हैं। आमिर खान की हंस ध्वनि मुझ में चंद्रमा की रोशनी भर देती है। बाबा का मैहर बैंड मुझे जैसे किसी लोरी से जगाता है। शहनाई के शिखर पर पहुंचकर बूढ़े बिस्मिल्ला खान का बच्चों जैसा चेहरा मुझे बचाता है। सरोद पर अली अकबर खान का दुर्गेश्वरी राग मुझ में ताकत पैदा करता है। श्री विनोद भारद्वाज।
नरेश जी के साथ साथ में अंडमान में 1990 के आसपास मैंने एक बार पत्र पढ़ी थी। मंडलोई जी ने कार्यक्रम किया था वहाँ पर, अंडमान में बहुत से कवियों को बुलाया था। तो आज मुझे इतनी भी अच्छा लग रहा है कि मैं नरेश जी के बस गीत चतुर्वेदी और नरेश जी जो हैं हिट पोइट्स हैं, मैं इनके बीच में सैंडविच हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा है कि श्रीकांत जी 1979 में स्वामीनाथन का एक बहुत महत्वपूर्ण शो हुआ था दिल्ली में, जिसमें कविता पाठ हुआ था, और स्वामी ने अपनी खुद कविताओं का एक छोटा सा संग्रह सर्वेश्वर जी के 51वें जन्मदिन से समर्पित, उसमें उनकी 12 कविताएं और मंदीप बाबा का 3 का कवर था। तो उस मौके पे हम सब लोगों ने गैलरी में कुत्तों के बीच में कविताएं पढ़ी थी। सब तो मैं बहुत जैसे विनय जी हैं वैसे ही था, मतलब उस उम्र में, और तो वो एक कविता मैंने वहाँ पढ़ी थी जिसका टाइटल इच्छा है लेकिन वो है एक लोटे पर। तो वो कविता क्योंकि श्रीकांत जी के साथ पढ़ी थी तो मुझे लगा कि शुरुआत में मैं जो 3 या 4 कविताएं पढ़ूंगा उस कविता को मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, कविता में से है, और धर्मवीर भारती ने उसको छापा था और वह कई बार मुझसे उसकी याद दिलाते थे। तो श्रीकांत जी को याद करते हुए ये पुरानी कविता है, अंत में एक मैं नई कविता से शुरू करूंगा जो कि मार्च के दिनों में लिखी गई। इच्छा, इस लोटे का भी एक सपना है, कभी कभी दिन में फुर्सत के वक्त जो इसे देखने को मिल जाता है, रात को इसे नींद नहीं आती। अजीब तरह के खाने की गंध और माँ कही गई बातों का स्वाद दिए नकली दांतों का एक सेट नल के ठंडे पानी में इसमें डूबा रहता है। तड़के सुबह का वक्त इसे पसंद है, कुछ जरूरी यादें, पेड़, जंगल गन्ने के खेत दिमाग भी घूम जाते हैं। इन दिनों तो आंगन के एक कोने में पड़ा ये महाराजन का इंतजार करता है, ये भी कोई सपने का वक्त है। पर लोटा कम वक्त एक सपना दिखता है कि उसे खूब चमकाया जाए, थोड़ा वक्त उसे भी दिया जाए। गिरने पर उसकी जो ये आवाज है, कई जगहों से जो वह टिचक गया है, उससे मुंह ना दिखाया जाए। पर लोटा तो आखिर लोटा है, एक दिन अपने कुछ इस तरह से गिरने के इंतजार में है कि एक अच्छी आवाज हो, अम्मा जी गुड़ की गर्म चाय उसमें बेरहमी से उड़ेल ना दे, उसका भी एक सपना हो, ना हो सपना एक पूरी नींद तो हो। करता है बारिश, मेरी अधिकांश कविता मंगलेश जी छापते थे जनसत्ता में, इसलिए उनको याद करते हुए कविता पढ़ रहा हूँ। बारिश में तीन वेश्याएं चढ़ी बस में, बहुत जोर जोर से हंस रही थी वे, सिनेमा के टिकटों को कसकर मुट्ठी में दबाए, बस में हलचल सी मच गई। कई लोगों को बचाना है अपने को इन तीन वेश्याओं से, पर हिम्मत देखिए, वे पूछते हैं पढ़े लिखे लड़के से, भैया कोटला जब आए तो बताना। मिनी बस का मन चला कंडक्टर लोगों को धक्के दे देकर भीतर भरते चले जा रहा है, तीन वेश्याओं को उसे क्या डर। बेरहमी से खींचता है एक वेश्या के हाथ से वे पांच का मुड़ा तुड़ा नोट। कंडक्टर का अंदाज पसंद नहीं आया उस वेश्या को, उसने मुंह बनाया। तीसरी बार वार्निंग थी उस लफंगे को जो बार बार छटे चले जा रहा था। अचानक उसे सीट मिल गई, एक भव्य किस्म की बुढ़िया एक स्टॉप पहले ही उतर गई। बारिश, सिनेमा के टिकट और घिरे आसमान ने एक दिव्य किस्म के मूड और मस्ती में ला दिया है इन तीन वेश्याओं को। एक वेश्या बैठ जाती है दूसरी की गोद में, वह जीत निकालती है एक बच्चे को देखकर। एक पढ़े लिखे अधेड़ ने लड़कियों से खूब शराफत से बात की, वेश्याओं से बात करने का उसका एक पहला मौका था। वे शायद अपना शौक भी भूल गया, इतनी धमाधम बारिश में आके उखड़ा कैसे जाए। एक चश्मे वाला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेश्याओं के इस तरह के सटने का बुरा नहीं मान रहा, अपनी छतरी झोले और किताबों को संभालता हुआ इस सफर के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देता है। तीन वेश्याएं उतर गईं तेज बारिश में, सब लोगों ने उन्हें दूर तक सड़क पर जाते देखा। अबे चल ओए कंडक्टर वर्षा ड्राइवर पर, बस में सन्नाटा था, वे तीन वेश्याएं थी, पर भला वे वेश्याएं कैसे थी जब किसी ने उन्हें कोठे से उतरते नहीं देखा। ये भी तो हो सकता है कि वे बारिश के बाद बादलों से उतरी हों अप्सराएं। कैसा है जो मैंने अभी मास्क लिए जब आया था, और एक हमारी मित्र कवयित्री मास्क में बिल्कुल मोना लिसा लग रही थी, तो मैंने ये सब कविता लिखी थी मोना लिसा 2003, जिसको आलोक धनवा का कहना था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर करता है। स्त्री का रहस्य उसके बालों में है, उसकी आंखों में या उसके मुस्कान में, ये मेरी समस्या नहीं है। सारे मर्दवादी कवियों को मैंने कब से विदा दे रखी है लियोनार्डो विंची की पेंटिंग है मोना लिसा। इस मास्क ने जरूर मेरी मुस्कान मुझसे छीन ली है, मेरी भीड़ कहीं बेरहमी से छिपा दी गई है। बरसों पहले लोगों पर पाबंदी नहीं थी, वे मेरे पास आ सकते थे, मुझसे बातें कर लेते थे, कुछ उनके गुप्त रहस्य में जान जाती थी, कुछ औरतें मेरी सहेलियां बन जाती थीं। एक दिन उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया गया, एक मजबूत रस्सी का घेरा बना दिया गया। ये लक्ष्मण रेखा मेरे लिए नहीं थी, मेरे चाहने वालों के लिए थी। मुझे तुम्हें क्या सच में लगता है लियोनार्डो कि मुझे एक आराम की जरूरत थी या एक गहरे अकेलेपन की? कमबख्तों ने मुझे भी एक खूबसूरत मास्क पहना दिया है, क्या उन्हें डर है कि ये महामारी मेरे रहस्य में मुझसे छीन देगी? नहीं, डरो नहीं, मेरे पास आओ। मुझे छुओगे तो खतरे की घंटियां बज जाएंगी, पर मेरे बहुत करीब आ जाओ। आज मुझे तुमसे सबसे ज्यादा जरूरत है, लूवर के इस भयावह एकांत में। एक आखिरी कविता जो मैं पढ़ूंगा वो है हिरणों का शिकार करती स्त्रियां। एक अवध का एक पुराना मिनिएचर मैंने देखा था जो जिसमें की स्त्रियां हिरणों का शिकार करती। क्या कहा तुमने, शिकार भी करती हैं स्त्रियां? घने और बिहड़ जंगलों में जाती हैं, उनके कोमल हाथों में धनुष होते हैं, बंदूकों से वे अचूक निशाने लगाती हैं। वह एक तस्वीर थी पांच औरतें सिंह की, और वे हरे रसीले चमकीले जंगल में हिरणों का शिकार कर रही थी। उनकी पोशाकें सुंदर थी, बहुत सुंदर थी उनकी पगड़ियां, उनके पैरों पर शानदार डिजाइन वाले जूते थे। लेकिन जरा हिम्मत तो देखिए, उन कमबख्त हिरणों की, वे अपनी पूरी मस्ती में थे, हवा में उछल रहे थे, हरी घास की एक नई चमक को अपने छलांग में पहचान रहे थे। देखो उस गुलाबी पोशाक वाली सुंदरी को, वह कुछ कह रही है दूसरी से, उसकी उसके कितने किसी निर्मम आदेश या उसकी खतरनाक बंदूक के प्रति उदासीन है ये हिरण। एक ने बड़े जोर से छलांग लगाई, दूसरे ने हरे रंग में अपना मुंह चमकाया, तीसरे ने शायद धीरे से कुछ गाया। पांच स्त्रियां हैं इस जंगल में, शायद इसीलिए हिरण आश्वस्त है। मुस्कंडे मूंछों वाले महाराजा कहीं नजर नहीं आ रहे, ना ही उनके हाथियों शिकारियों और चमचों ने सारे जंगल को रौंद रखा है। ये अलग तरह का दिन है, एक दूसरी ही तरह का हरा रंग चमक रहा है। आज स्त्रियां शिकार करने के निकली हैं, क्या वे रानियां हैं? जरूर वे रानियां ही होंगी, कुछ उनकी सेविकाएं होंगी और कुछ सखियां। बंदूक से टकटकी बांध कर वे उस भव्य दृश्य को देख रही होंगी। क्या ये सचमुच शिकारी होते हैं? अवश्य किसी चित्रकार ने शायद नवाब के मनोरंजन के लिए तस्वीर बनाई हो सकता है उसने सच्चाई ही दिखाई हो, भरोसे से कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आपको आखिर शक क्यों हो रहा जनाब? स्त्रियां बहुत बहादुरी से काम कर चुकी हैं इस रक्त रंजित इतिहास में। कितनी अद्वितीय मिसालें मौजूद हैं विदुषी सुंदर और बहादुर स्त्रियों की, ये जो भी काम करती हैं सलीके और सुंदरता से करती हैं। लेकिन हिरण कुछ और ही सोच रहे थे। इस अद्वितीय क्षण में वे कवियों की तरह हो गए हैं, उन्हें विश्वास है स्त्रियां स्त्रियों की तरह शिकार करेंगी, एक कुशल कोमलता और सुंदरता के साथ, और वे निश्चिंत होकर एक शानदार बहुत ऊंची और शायद आखिरी छलांग हवा में लगाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।